नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में साहित्य और संस्कृति के कार्यक्रम दिल्ली शब्दोत्सव का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम 4 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के राय पिथौड़ा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने गत वर्ष 2025 के दौरान ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत साउथ वेस्ट जिले में 1303 लापता लोगों और बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी की हवा में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफी सुधार हुआ। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली शब्द उत्सव का उद्घाटन किया। 4 जनवरी तक चलने वाले इस साहित्यिक और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग तथा सुरुचि प्रकाशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शब्दोत्सव के पहले दिन आज काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस कार्यक्रम में देश भर से 100 से अधिक वक्ता के हिस्सा लेने की संभावना है। महोत्सव के दौरान 100 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 2 बड़े कवि सम्मेलन भी होंगे और अगले 3 दिनों में 40 से अधिक पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहली बार यह कार्यक्रम राजधानी में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है।
एक ऐतिहासिक यात्रा जो भारत ने तय करी, वैदिक काल से लेकर के आज के डिजिटल युग तक पहुंचने की, उसका साक्षी आज का ये शब्दोत्सव बनने वाला है। भारत अभ्युदय की थीम पे आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का यहाँ आना भविष्य की और बढ़ते भारत के कदम दिखाता है।
इस अवसर पर दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक चेतना जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा होगी।
आने वाले दिनों में भारत की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर, भारत के असली इतिहास के मुद्दे पर, नैरेटिव के बहुत सारे विषयों पर गंभीर चर्चाएं होंगी और यहां तक कि जैन जी की आप यहां पर भागीदारी देख सकते हैं। हजारों युवा यहां पर आया हुआ है। यहां पे भजन क्लबिंग के इवेंट है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। और कुल मिलाकर इस प्रकार के आयोजन को हम ये संकल्प के साथ कर रहे हैं कि हर साल दिल्ली सरकार और सुरुचि प्रकाशन मिलके भव्य आयोजन दिल्ली शब्दोत्सव का करेगी।
आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के राय पिथौड़ा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के महान विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि ये देश के युवाओं और उसकी समृद्ध संस्कृति के बीच संबंध को और सुदृढ़ करने का भी एक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिपरहवा के प्रामाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के संग्रह में संरक्षित है। उन्होंने इन अवशेषों की स्वदेश वापसी के लिए काम करने वाले सभी लोगों की सराहना की। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सचदेवा ने बताया कि बैठक के दौरान एक साथ चुनाव कराने से लोकतांत्रिक दक्षता बढ़ाने तथा नीति निरंतरता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये पहल सुशासन, स्थिरता और राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक प्रतिबद्ध कदम को दर्शाती है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और अभियानों को लेकर झूठ और भ्रम फैला रही है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि शिक्षकों से जुड़ी भ्रामक जानकारी फैलाकर दिल्ली में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई, जिसे सरकार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। श्री सूद ने स्पष्ट किया कि स्कूल परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी सर्कुलर को आम आदमी पार्टी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। इसके अलावा उनके द्वारा ये झूठ फैलाया गया कि शिक्षकों को कुत्तों की गिनती का आदेश दिया गया है, जबकि सर्कुलर में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सर्कुलर का उद्देश्य केवल स्कूल परिसरों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना है।
मैं आज उस सर्कुलर के तीन महत्वपूर्ण हिस्से आपके सामने पढ़ता हूँ। पहला, डायरेक्शन टू सिक्योरिटी गार्ड, गेटकीपर, चौकीदार टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्ट्रे डॉग्स। ना तो आपने उसे चलाया, सोशल मीडिया पर कुछ एक कागज डालकर भ्रम फैलाया जाता और अरविंद केजरीवाल स्टूडेंट स्कूल की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ऑल कंसर्न एचओएस, गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट, ऑफिस इंचार्ज, स्टेडिया इंचार्ज मस्ट पुट इन प्लेस सिक्योरिटी अरेंजमेंट टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्ट्रे डॉग्स इनटू टेरिटोरियल लिमिट्स।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि में देश की शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रोफेसर सिंह ने ये बात श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के आगामी शताब्दी समारोह में कही। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में SRCC ने न केवल उत्कृष्ट अर्थशास्त्री और वाणिज्य विशेषज्ञ तैयार किए हैं, बल्कि ऐसे नीति निर्माता और उद्यमी भी दिए हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में प्रभावी योगदान दिया है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। दिल्ली के नागलोई में जल संग्रहण संयंत्र के मरम्मत कार्य के कारण कल से 12 जनवरी तक जलापूर्ति कम दबाव या कम समय के लिए उपलब्ध होगी। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार इस कार्य के कारण नागलोई, पश्चिम विहार, मुंडका और आसपास की कॉलोनियां प्रभावित रहेंगी। बोर्ड ने इस दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी इकट्ठा कर रखने को कहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने शहरवासियों से किसी भी आपात स्थिति के लिए बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने की सलाह दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि 1 फरवरी से सभी नए फास्टैग जारी करने के लिए कारों के नो योर व्हीकल KYC कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ये कदम राजमार्गों से यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा और फास्टैग एक्टिवेशन के बाद की परेशानियों को दूर करने के लिए उठाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने गत वर्ष 2025 के दौरान ऑपरेशन मिलाप के तहत साउथ वेस्ट जिले में 1303 लापता लोगों और बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया है। पुलिस के अनुसार इनमें 434 नाबालिग और 869 बालिग शामिल हैं। इसके अलावा इस जिले की पुलिस ने पिछले एक महीने में 100 से अधिक लापता व्यक्तियों और बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों को सौंपा है। पुलिस के अनुसार इन मामलों में 35 लापता या बच्चे तथा 67 वयस्क शामिल है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि लापता लोगों की तलाश के लिए CCTV फुटेज, स्थानीय पूछताछ और सार्वजनिक स्थानों पर पहचान अभियान चलाया गया है। नेपाल पुलिस के 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेशी अध्ययन दौरे के तहत आज नई दिल्ली स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा किया। ये प्रतिनिधिमंडल नेपाल के पुलिस लीडरशिप कोर्स का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तथा बेहतर पुलिसिंग तरीकों के बारे में जानकारी देना है। दिल्ली पुलिस अकादमी द्वारा आयोजित इस दौरे के दौरान दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने नेपाल के पुलिस के 17 प्रशिक्षु अधिकारियों तथा 8 प्रशिक्षक अधिकारियों के साथ संवाद किया। श्री गोलचा ने प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून व्यवस्था प्रबंधन और आधुनिक पुलिसिंग से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सोशल मीडिया केंद्र, ज्ञान केंद्र और अन्य प्रमुख सुविधाओं का अवलोकन भी किया। ये प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के विभिन्न थानों और ट्रैफिक सर्कलों का दौरा भी करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी की हवा में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफी सुधार नजर आ रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि वर्ष 2025 में PM2.5 कण का औसत स्तर 104 दर्ज किया गया है, जो वर्ष 2024 में 110 थी। वही PM10 कण भी 2025 से घटकर 2013 पर आ गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 200 दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से नीचे रहा और इसके अलावा पिछले 8 वर्षों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे बेहतर रहा है। वहीं गंभीर प्रदूषण वाले दिनों की संख्या भी ऐतिहासिक रूप से सबसे कम दर्ज की गई, जो दिल्ली सरकार की नीतिगत दृढ़ता और सख्त क्रियान्वयन का परिणाम है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को घोषणाओं का मुद्दा नहीं बल्कि कार्रवाई का विषय बनाया। श्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार ने वैज्ञानिक योजना, धूल नियंत्रण, वाहन प्रदूषण पर सख्ती, उद्योगों पर निगरानी और कचरा प्रबंधन जैसे हर मोर्चे पर ठोस काम किया गया, जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन औषध निगरानी योगदान में भारत वैश्विक स्तर पर अब 8वें स्थान पर है, जबकि 10 वर्ष पहले ये 123वें स्थान पर था। श्री नड्डा ने आज नई दिल्ली में औषध मानकों के बारे में भारत की आधिकारिक पुस्तक इंडियन फार्मासोपिया 2026 के 10वें संस्करण के विमोचन पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि हाल में जारी रिपोर्ट में 121 विशेष लेखों को शामिल किया गया है, जिससे विशेष लेखों की कुल संख्या बढ़कर 3,340 हो गई है। श्री नड्डा ने बताया कि पहली बार शामिल किए गए 20 रक्त घटक के बारे में विशेष लेखों से थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और एनीमिया जैसे रोगों में शोध और अध्ययन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए विशेष लेखों से राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम, एनीमिया मुक्त भारत और सभी के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को सीधे तौर पर लाभ होगा। श्री नड्डा ने कहा कि इंडियन फार्मासोपिया अर्थात भारतीय औषध कोष को 19 विकासशील और अल्प विकसित देशों में मान्यता प्राप्त है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की विकास यात्रा में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रालय की वर्ष के अंत की उपलब्धियों पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार 2014 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दे रही है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश भविष्य में तकनीकी और नवाचार के बल पर विकास में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में महाराष्ट्र के पालघर में विरार और बोईसर को जोड़ने वाली लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने ये बात कही।
आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स और एक अंडरसी टनल। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन्स हैं, 3 डिपोज बने हुए हैं। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो समझने के लिए आप सबको जरूरी होगा।
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसमें लगभग 41,863 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। राजधानी में आज सुबह कोहरा छाया रहा, वहीं दिनभर धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 213 दर्ज किया गया, जो वायु की खराब स्थिति को दर्शाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में साहित्य और संस्कृति के कार्यक्रम दिल्ली शब्दोत्सव का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम 4 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के राय पिथौड़ा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने गत वर्ष 2025 के दौरान ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत साउथ वेस्ट जिले में 1,303 लापता लोगों और बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।